आस्तिक जब अरुणिमा के कमरे में आता है तो अरुणिमा खिड़की के पास खड़े होकर अपने आंसू साफ कर रही थी। आस्तिक अरुणिमा के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आकाश को याद कर रही हो? अरुणिमा रोते हुए आस्तिक को देखकर कहती है, और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे अपने बच्चे के लिए। पता नहीं मेरा बच्चा वहां पर ठीक से खा भी रहा होगा या नहीं, और मैं यहां पर। आस्तिक उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। आस्तिक अपना फोन निकाल कर देखता है तो उसमें डॉक्टर डैन का कॉल आ रहा था। आस्तिक डॉक्टर डैन के कॉल को देखकर एक नज़र अरुणिमा को देखता है जो उसे आंसू भरी नज़रों से देखे जा रही थी। आस्तिक अरुणिमा को देखता है और कमरे से बाहर चला जाता है। वो छत पर जाकर डॉक्टर डैन का फोन उठाते हुए कहता है, जी डॉक्टर साहब, बताइए कैसे फोन किया है, वो भी इस वक्त? इस वक्त वहाँ रात हो रही है, इतनी रात को फोन करने की क्या वजह है? सब ठीक तो है ना? आकाश ठीक तो है ना? डॉक्टर डैन ने कहा, जी राजा साहब, आकाश बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आज आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि आज आकाश को फिर से ट्रॉमा पड़ा था, जिसकी वजह से उसने खुद को घायल भी कर लिया था। मुझे लगता है राजा साहब कि आकाश को अब इलाज की नहीं बल्कि परिवार के साथ की ज़रूरत है। आस्तिक थोड़ा गुस्से में कहता है, व्हाट नॉनसेंस डॉक्टर, हम यहाँ पर अपने बच्चे के लिए इतने सालों से तड़प रहे हैं लेकिन फिर भी उसे खुद से दूर रखा हुआ है, ये सोचकर कि उसका वहाँ पर सही से इलाज हो रहा होगा, और अब आप कह रहे हैं कि उसे इलाज की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर डैन ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं राजा साहब, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था कि उन्हें इलाज की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उन्हें इलाज की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके से ये अकेले अपना इलाज पूरा कर रहे हैं और उनके आसपास कोई भी नहीं है जो उन्हें संभाल सके, ऐसे में इनका ठीक होना इम्पॉसिबल सा लग रहा है। इनकी थेरेपी कंटिन्यू रहेगी लेकिन उस थेरेपी का असर अब शायद इनके ऊपर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जितना हम उनके मन को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ये और ज़्यादा वायलेंट होते जा रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही सलूशन है कि इन्हें उन लोगों के साथ रखा जाए जो इन्हें प्यार करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। राजा साहब, आकाश मेरा पेशेंट है, इस वजह मेरा उसे सपोर्ट करना बनता है, लेकिन मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। जितनी थेरेपी मैंने आकाश की है उस हिसाब से अब तक उसका ब्रेन ब्लॉकेज ठीक हो जाना चाहिए था, और ये कुछ हद तक पॉसिबल भी हो पाया है, पर 100% नहीं। आस्तिक परेशान होते हुए कहता है, अगर 100% नहीं हुआ है तो फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी अभी मैंने आपको बताया ना राजा साहब, इसके लिए आपको आकाश को उसकी फैमिली के साथ रखना चाहिए, जहाँ पर वो खुश रहे, मुस्कुराता रहे। जितना वो हंसेगा, जितना वो मुस्कुराएगा, जितना वो अपनों के साथ हैप्पी रहेगा, उतना ही उसका दिमाग का वो हिस्सा काम करना शुरू करेगा। आस्तिक कुछ सोचने लगता है और उसके बाद कहता है, ठीक है डॉक्टर, मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करता हूँ, फिलहाल आप आकाश का ख्याल रखिएगा। आस्तिक फ़ोन काट के वापस जाने के लिए मुड़ता ही है कि उसकी नज़र सामने खड़ी अरुणिमा पर पड़ती है, जो हैरान नज़रों से आस्तिक को देख रही थी, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आस्तिक को पता चल गया था कि उसने सब कुछ सुन लिया है। अरुणिमा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन अरुणिमा की आंखों में आंसू थे और उसने आस्तिक को देखते हुए कहा, आस्तिक क्या बात कर रहे थे तुम आकाश के बारे में? देखो मुझसे झूठ मत कहना, सच सच बताओ, मैंने सारी बातें सुन ली हैं, क्या कह रहे थे आकाश के डॉक्टर? मुझे बताओ आस्तिक, कैसा है मेरा बच्चा, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? अरुणिमा ये कहते हुए रोने लग जाती है। आस्तिक अरुणिमा को कंधे से पकड़ता है और अपने सीने से लगा लेता है, और अरुणिमा आस्तिक के शर्ट को मजबूती से पकड़ते हुए जोर जोर से रोए जा रही थी, लेकिन आस्तिक उसे संभाल रहा था। बताइए ना आस्तिक, क्या हुआ है आकाश को, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरा मन घबरा रहा है। आस्तिक कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और अरुणिमा को संभालने लगता है। तभी वहां पर अनंत भी आ जाता है। वो अरुणिमा को ऐसे रोता परेशान हो जाता है। वो जल्दी से आस्तिक और अरुणिमा के पास आता है और घबराते हुए कहता है, माँ पापा क्या हुआ, पापा मम्मी ऐसे रो क्यों रही हैं? आस्तिक देखता है कि कुछ देर रोने के बाद अरुणिमा को हिचकी आने लगी थी और उसकी सांस चढ़ने लगी थी। आस्तिक धीरे से अरुणिमा को अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर कमरे में आता है। अनंत भी बहुत परेशान हो गया था। बेड पर लेटने के साथ ही अनंत अरुणिमा के हाथों को रब करने लगता है और आस्तिक उसके सर को सहलाने लगता है। आस्तिक अनंत को देखकर कहता है, अनंत डॉक्टर को फ़ोन करो। अनंत घबराते हुए हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। वो अरुणिमा को इंजेक्शन दे देते हैं जिससे अरुणिमा चैन की नींद सो जाती है। डॉक्टर आस्तिक को बताते हैं कि अरुणिमा को लो बीपी की वजह से चक्कर आ गए थे, उसे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। आस्तिक छत के किनारे खड़ा था और सामने जयपुर शहर को देख रहा था, लेकिन सिर्फ उसकी नज़रें वहाँ के नज़ारे को देख रही थी, दिमाग तो उसका कहीं और था। तभी अनंत आस्तिक के पास आता है और कहता है, पापा क्या बात हुई थी आपकी माँ से और अचानक उनकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई है? अब तक तो वो ठीक थी। आस्तिक ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अनंत को देखकर कहा, उसे आकाश की याद आ रही है। आकाश का नाम सुनते ही अनंत के चेहरे पर नरमी आ जाती है और वो कहता है, पापा मुझे लगता है कि अब भाई को वापस बुला लेना चाहिए। इतने साल हो गए उन्हें अमेरिका गए हुए, अब तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए ना। माँ भी हर वक्त भाई को ही याद करती रहती है, अब आप भाई को वापस ले आइए। और वैसे भी अगले महीने तो अम्मू की शादी है ना, उसमें तो भाई आएंगे ही, उन्हें तो पता ही होगा कि अगले महीने अमृता की शादी है। आस्तिक एक गहरी सांस छोड़ते हुए नामे सर हिलाता है और कहता है, नहीं, आकाश को अमृता की शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही किसी ने उसे कुछ बताया है। उसे तो तब कुछ पता होगा ना जब वो किसी से बात करेगा। किसी से बात करना तो दूर की बात है, वो तो मेरा फ़ोन तक नहीं उठाता है। मैं उसे कितने कॉल कितने मैसेज करता हूँ लेकिन हमेशा ही उसका असिस्टेंट फ़ोन उठाकर ये कहता है कि वो बिज़ी है। समझ में नहीं आता ऐसा कौन सा काम करता है कि सारा दिन बिजी ही रहता है।